समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
दौलत और शोहरत से भले ही सब कुछ पा लिया जाए, लेकिन दिल का सुकून सिर्फ अच्छे कर्मों से ही मिलता है। तो सुबह सवेरे अपने प्रिय श्रोताओं से मिलने, उनसे ढेर सारी बातें करने का जो कर्म है, वो भी तो अच्छे कर्म की श्रेणी में आता है। तो एक नई सोच, एक नई ऊर्जा और एक नए एहसास के साथ समाचार पत्रिका कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो स्वीकार कीजिए आप ही के अपने रवि कपूर और अनीता आनंद, हम दोनों का नमस्कार।
नमस्कार and a very warm welcome to all our listeners tuned into Akashwani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashwani network. We bring you our daily news magazine program Aaj Savere, wherein we share the latest in national, international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 18th of November. So let's begin with the headlines, Ravi.
Ji bilkul. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। शिखर सम्मेलन से इतर श्री मोदी के विश्व नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें करने का भी कार्यक्रम है। श्री मोदी के साथ ही अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उन नेताओं में शामिल हैं जो रियो डी जेनेरियो में दो दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज सुबह ब्राजील पहुंच गए हैं। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की तिकड़ी G20 शिखर सम्मेलन की चर्चाओं में काफी सक्रिय है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर भारत की स्थिति प्रस्तुत करेंगे और G20 के पिछले वर्ष नई दिल्ली में आयोजित शिखर सम्मेलन में जारी घोषणा पत्र के परिणामों के साथ साथ हाल के वर्षों में भारत द्वारा आयोजित वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के परिणामों पर चर्चा करेंगे। इस वर्ष के G20 शिखर सम्मेलन का विषय एक न्याय संगत विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण है। इस सम्मेलन में ब्राजील द्वारा सामाजिक समावेशन, गरीबी, सतत विकास और वैश्विक शासन संस्थानों के सुधार के मुद्दों को प्राथमिकता देने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले वर्ष ये भारत द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएगा। पिछले साल सितंबर में भारत ने नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की सफलताओं पूर्वक मेजबानी की थी, जहां उसने विश्व नेताओं को नई दिल्ली घोषणा पत्र में रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे को शामिल करने के लिए आम सहमति बनाकर एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की। सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए भारत ने वैश्विक मंच पर ग्लोबल साउथ को प्राथमिकता देते हुए अफ्रीकी संघ को भी G20 ब्लॉक में शामिल करने का बड़ा कदम उठाया था।
कैंपेनिंग फॉर द सेकेंड फेज ऑफ असेंबली पोल्स इन झारखंड एंड सिंगल फेज पोलिंग इन महाराष्ट्र will end this evening. Senior leaders of various political parties are making all-out efforts to woo the voters. Polling in the two states will be held on Wednesday. In Maharashtra, voting will take place on all 288 seats, and in Jharkhand, 38 seats are going to polls in the second phase in the state. Counting of votes for assembly elections in Jharkhand and Maharashtra will take place on the 23rd of this month.
दिल्ली के परिवहन मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश गहलोत ने कल आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। श्री गहलोत ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नाम लिखे अपने इस्तीफा पत्र में सरकार द्वारा जनता से किए गए वायदों को पूरा न करने का आरोप लगाया है। श्री गहलोत ने कहा है कि पार्टी ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने का जनता से वादा किया था, लेकिन पूरा नहीं कर पाई। श्री गहलोत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के पुनः निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोपों का भी अपने इस्तीफे में जिक्र किया है। पार्टी से श्री गहलोत के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि इस्तीफे के पीछे भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा श्री गहलोत पर इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को दिल्ली की जनता के बीच लेकर जा रही थी, श्री गहलोत ने उन्हीं मुद्दों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर इस्तीफा दिया है।
The Commission for Air Quality Management, CAQM, has imposed the Graded Response Action Plan, GRAP 4, in Delhi NCR from 8 this morning. The move comes after air quality in the region deteriorated to the severe category. Under the GRAP 4, entry of heavy vehicles from other states will be banned in Delhi. However, trucks carrying essential commodities and providing essential services will be allowed. All CNG, electric and BS6 diesel trucks will also be permitted to enter Delhi. Delhi government has decided to discontinue physical classes for all students, excluding classes 10 and 12. In a social media post, Delhi Chief Minister Atishi informed that all schools will conduct online classes until further orders. Former Indian women's cricket captain Mithali Raj has been appointed as the mentor of women's cricket operations by the Andhra Cricket Association, ACA. Raj, who is widely regarded as one of the greatest female cricketers, has signed a 3-year contract with the ACA. Her primary responsibility will be to scout and nurture young talent across the state with a focus on developing the next generation of women cricketers.
भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा 22 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में शुरू हो रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के प्रारंभिक मुकाबले से बाहर रहेंगे। उनकी जगह उप कप्तान जसप्रीत बुमराह टीम की कमान संभालेंगे। बुमराह इससे पहले 2021-22 में इंग्लैंड में हुए टेस्ट मैच में भारतीय टीम की कप्तानी कर चुके हैं। उस समय रोहित शर्मा कोविड से ग्रसित होने के कारण 5वें टेस्ट में भाग नहीं ले सके थे। इससे अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया में सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल भी पहला टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। अंगूठे में चोट के कारण उन्हें बाहर रखा गया है। मैच से पहले टीम के सिमुलेशन प्रशिक्षण के दौरान फील्डिंग करते हुए वे चोटिल हो गए थे। केएल राहुल और अभिमन्यु ईश्वरन पहले मैच में शुभमन गिल और रोहित शर्मा की जगह खेल सकते हैं।
इन विमेंस एशियन का हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी डिफेंडिंग चैंपियंस इंडिया स्टॉर्म्ड इनटू द सेमीफाइनल्स डिफीटिंग Japan 3-0 in the final group stage match at Rajgir in Bihar. With the win, India topped the group stage with maximum 15 points from 5 matches ahead of Olympic silver medalist China with 12 points. Japan finished 4th with 5 points to take the final semi-final berth.
To ye the ab tak ke mukhya samachar. और अब चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचारों की जानकारी दे रही हैं अनीता आनंद।
द मेघालय गवर्नमेंट इज सेड टू कोलैबोरेट विद द तमिलनाडु गवर्नमेंट टू बूस्ट टूरिज्म एंड स्ट्रेंथन इंटर स्टेट रिलेशंस, हाइलाइटिंग द सिनर्जी। मेघालय चीफ मिनिस्टर कॉनराड के सांगमा एम्फसाइज तमिलनाडु इन्फ्लुएंस ऑन मेघालय हेल्थ केयर सिस्टम, नोटिंग दैट इन द हेल्थ सेक्टर तमिलनाडु इज डूइंग एग्जेम्पलरी वर्क। मेघालय हैज अडॉप्टेड स्ट्रेटजीज फ्रॉम द तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन to streamline medical supply chains, minimizing wastage and expired medications. Additionally, an MOU facilitated the training of 100 Meghalaya doctors in Tamil Nadu, bolstering the state's health workforce. Conrad Sangma also highlighted ongoing efforts to upgrade Shillong Airport in Umroi, enabling direct connectivity with the metros like Chennai. The Head and Neck Centre Hospital has organised South India's first workshop on treating facial paralysis through surgery. Surgeons from across the country, including plastic surgeons, oral and maxillofacial surgeons, ENT specialists, and head and neck surgeons, participated in the 2-day workshop. Director of the hospital, Dr. S. Vidyadharan, said that the workshop focuses on surgical treatment of facial paralysis to improve smile and facial expressions. Italian surgeons Professor Federico Biglioli and Dr. Federico Bolognosi shared their techniques and insights with the participants during the event. The Governor of Karnataka, Thavarchand Gehlot, flagged off a delegation to the leadership summit to be held in London. The summit brings together leaders, media professionals and dignitaries to discuss global leadership trends and cross-cultural exchanges. Addressing the event, the governor underlined the pivotal role played by newspapers and news channels in democracy. He said that the media strengthens democratic values, constitutional principles and societal awareness. They highlight public issues, social concerns, economic challenges and matters of national and international importance for keeping the public well informed. Speaking about the summit in London, the governor said that it is a unique platform that offers an opportunity to showcase India's rich culture and heritage while engaging with global perspectives. The Telangana state government has decided to provide 100% tax exemption from road tax and registration fees for electric vehicle EVs in the state. The new policy will come into force from today. State Transport Minister Ponnam Prabhakar announced this last evening in a major policy decision at a press conference in Hyderabad. He said the government brought this policy to avoid pollution in Hyderabad like Delhi. Electric four-wheelers, two-wheelers, electric commercial vehicles, tri-goods vehicles, electric vehicles are exempted from these taxes. Electric buses purchased and registered in Telangana for the initial 2 years up to 31st of December 2026, irrespective of the number of vehicles registered, are also fully exempt from road tax and registration fees for the entire life of the EVs. However, they must be operated by the Telangana State Road Transport Corporation only. The bus is owned by any industry for the purpose of transporting their employees exclusively are also exempt, provided further that these buses are not used for commercial purposes. The state government has decided to replace the existing 3,000 buses with electric buses in Hyderabad to control pollution levels. And now for Metro News from Delhi, Mumbai and Kolkata, over to Ravi Kapoor.
धन्यवाद अनीता. शुरुआत दिल्ली से ही कर लेते हैं. दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने कल बदरपुर क्षेत्र के मीठापुर चौक के पास आगरा और गुड़गांव नहर पर बने दो नए पुलों का उद्घाटन किया. इन पुलों के शुरू होने से दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोगों को जाम से राहत मिलेगी. इस अवसर पर श्री विधूड़ी ने कहा कि पुराने पुलों की वजह से मीठापुर चौक के पास जाम की स्थिति बनी रहती थी, लेकिन अब लोगों को जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा. पुलों के निर्माण के लिए श्री विधूड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी ओर से ये जनता के लिए एक बड़ा तोहफा है. राष्ट्रीय राजधानी में प्याज की आपूर्ति के लिए कल नासिक से कांदा एक्सप्रेस रेलगाड़ी दिल्ली के किशनगंज रेलवे स्टेशन पहुंची. दिल्ली पहुंची इस प्याज को शहर के विभिन्न हिस्सों में बिक्री के लिए भेजा जाएगा. रेल रैक द्वारा प्याज की विश्वसनीय और कम खर्च पर आपूर्ति के लिए प्याज का बड़े पैमाने पर परिवहन किया जाता है. इस पहल से नासिक क्षेत्र के प्याज किसानों को थोक परिवहन के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व मिला है. नई दिल्ली में चल रहे 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कल रविवार को छुट्टी वाले दिन बड़ी संख्या में आगंतुक मेले का आनंद लेने भारत मंडपम पहुंचे. सबसे ज्यादा भीड़ विदेशी स्टॉलों पर देखी गई. इनमें अफगानिस्तान, तुर्की, थाईलैंड, चीन, मिस्र और ईरान के स्टॉल शामिल हैं. मेले में विदेशी स्टॉलों के साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के देशी उत्पाद और व्यंजनों का जायका लेते हुए भी लोग नजर आए. मेले में लगभग 3,500 प्रदर्शक अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं. आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के कार्यकारी निदेशक प्रेमजीत लाल ने बताया कि आगंतुकों की सुविधा के लिए मेले में व्यापक इंतजाम किए गए हैं. नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में कल दिव्यांगजनों के हुनर को प्रदर्शित करने के लिए स्पेशल हारमोनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में जाने माने गायक अमित कुमार, भाजपा सांसद मनोज तिवारी और कई क्षेत्रों के गणमान्य लोग शामिल हुए. कार्यक्रम में दिव्यांगजनों ने अपने गायन का प्रदर्शन किया, जिसने श्रोताओं का मन मोह लिया. कार्यक्रम का आयोजन गैर सरकारी संस्था स्पेशल ओलंपिक भारत द्वारा किया गया. बढ़ते हैं मुंबई की ओर चलते हैं. 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा आम चुनाव से पहले गढ़चिरौली जिले के संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर मतदान दलों की तैनाती शुरू हो गई है. अहेरी निर्वाचन क्षेत्र में 76 चुनाव दलों के 304 मतदान अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षित रूप से 14 बजे तक पहुंचाया गया. कल सुबह ईवीएम और अन्य आवश्यक इकाइयों के साथ शिविरों में तैनाती की गई. भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टरों द्वारा तैनाती की गई. चुनाव विभाग ने मतदान दलों का गर्मजोशी से स्वागत किया, जिसमें बैंड, संगीत, माला और औपचारिक सम्मान शामिल था. गढ़चिरौली जिले में 3 निर्वाचन क्षेत्रों आरमोरी, गढ़चिरौली और अहेरी में 972 मतदान केंद्र हैं. स्वीप पहल के अंतर्गत महाराष्ट्र के पालघर जिले में मतदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने और आगामी विधानसभा चुनावों में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कल रन फॉर वोट कार्यक्रम आयोजित किया गया। 3 और 5 किलोमीटर की मैराथन हुतात्मा स्मारक से शुरू हुई। ये रैली वलन नाका अम्बेडकर चौक से होते हुए पंचवति पर समाप्त हुई। इस कार्यक्रम में 18 वर्ष से कम आयु के स्कूल और कॉलेज के छात्र, 18 वर्ष से अधिक आयु के युवा, वरिष्ठ नागरिक, खेल संगठन, पुलिस सहित विभिन्न समूहों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कोलकाता की ओर। बंगाल में सर्दी धीरे धीरे दस्तक दे रही है। भारतीय मौसम विभाग के अलीपुर मौसम कार्यालय ने आने वाले 7 दिनों में उत्तर और दक्षिण बंगाल के जिलों में शुष्क मौसम की भविष्यवाणी की है। कोलकाता और उपनगरीय इलाकों में आसमान साफ रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार। और अनीता बारी है इतिहास के पन्नों को पलटने की, तो पलट लेते हैं इतिहास के पन्नों को। लेकिन हाँ, उससे पहले
we have to give the weather update of the metros also to our listeners, right?
Ji, bilkul.
Ji. So Chennai is expected to have thunderstorm with rain. The minimum temperature was 26 degrees Celsius and the maximum will be around 32 degrees. Bengaluru is expected to have fog or mist in the morning and partly cloudy sky later. The minimum temperature was 19 degrees Celsius and the maximum will be around 27 degrees. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 16 and a maximum of 29 degrees Celsius.
और वैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो कोहरा छाना शुरू हो गया है आज। सब मैं जब आ रहा था और आप भी जब आई होंगी, आपको कोहरा जरूर मिला।
Yeah, it was very foggy, yes.
चलिए अब पलट लेते हैं इतिहास के पन्नों को और जान लेते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ। लेकिन अनीता, उससे पहले अपने श्रोताओं को एक छोटी सी जानकारी दे दें कि आज विश्व वयस्क दिवस है और इसका आयोजन जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया जाता है। ये बढ़ती उम्र की समस्या से निपटने के लिए मनाया जाता है। ये वयस्कों को अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहने और उनकी मदद करने के लिए प्रोत्साहित करने की एक पहल होता है। और
इन द ईयर 1727 महाराजा जय सिंह द सेकंड ऑफ अम्बेर लेड द स्टोन ऑफ जयपुर सिटी। विद्याधर चक्रवर्ती ऑफ बंगाल वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द फर्स्ट प्लान सिटी इन इंडिया। In the year 1772,
1772 में पेशवा माधवराव प्रथम के छोटे भाई नारायण राव ने गद्दी संभाली थी।
And in the year 1839, Nainital was discovered by P. Baron, a European sugar merchant and an enthusiastic hunter from Rosa near Shahjahanpur. He had no sooner caught a glimpse of the lake in his sylvan setting than he realized its potential as a hill resort and went full steam in colonizing it. Moved by the beauty of this sparkling lake, he wrote, "It is by far the best sight I have witnessed in the course of 1500 miles trek in the Himalayas."
वैसे आप नैनीताल गई हैं क्या?
जी बिल्कुल, 2-3 बार गई हूँ।
बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है।
Of course, and a beautiful lake also there.
जी।
And moving on, in 1911, free primary school education was introduced, and in the year 1937, 1100 prisoners were freed after appeal by Gandhi in his first political act.
1956 में आज के दिन मोरक्को ने स्वतंत्रता हासिल की थी। 1959 में आज के दिन INS विराट को ब्रिटिश रॉयल नेवी में कमीशन किया गया था।
And in the year 1972, tiger was adopted as the India's national animal.
2013 में आज के दिन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर माविन यान को भेजा था। और 2017 में आज के दिन भारत की मानुषी छिल्लर ने जीता मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब। और अब समय हो गया है अनीता कुछ महानुभावों की पुण्यतिथियों, जयंतियों या जन्मदिन के बारे में अपने श्रोताओं को जानकारी देने का। तो इस क्रम में आज सबसे पहला नाम है मेजर शैतान सिंह का, जो परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय व्यक्ति हैं। इनका जन्म हुआ था 1 दिसंबर 1924, लेकिन शहादत हुई थी 18 नवंबर 1962 को। इन्हें ये सम्मान यानी कि परमवीर चक्र का सम्मान 1962 में मरणोपरांत मिला। चीन का ये युद्ध 1962 में आक्साई चीन सीमा विवाद से शुरू हुआ, जिसमें मेजर शैतान सिंह ने अपना भरपूर पराक्रम दिखाया था।
हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम।
बात कर लेते हैं भारतीय वायुसेना में गरुड़ कमांडो में से एक रहे ज्योति प्रकाश निराला की भी। आपका जन्म हुआ 15 नवंबर 1986 को रोहतास जिला बिहार में, लेकिन शहादत हुई 18 नवंबर 2017 जम्मू कश्मीर में। कश्मीर में शहीद होने वाले कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला को 26 जनवरी 2018 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जांबाज निराला को मरणोपरांत यह सम्मान दिया, जिसे उनकी पत्नी और मां ने ग्रहण किया था।
And today is the death anniversary of the French novelist, literary critic, essayist who wrote the monumental novel translated into English as Remembrance of Things Past and more recently In Search of Lost Time. We are talking about Eugene Marcel Proust. This was published in 7 volumes between the years 1913 and 1927. He is considered by the critics and writers to be one of the most influential authors of the 20th century. He was born on 10 July 1871 at the home of his great uncle, Paris Bordeaux of Auteuil. And much of the search of lost time concerns the vast changes, most particularly the decline of the aristocracy and the rise of the middle classes that occurred in France.
और अनीता बात कर लेते हैं बंगाली सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म निर्देशक पद्म भूषण सम्मानित धीरेन्द्र नाथ गांगुली के बारे में। आपका जन्म हुआ था 26 मार्च 1893 को, लेकिन आपने इस दुनिया से विदा ली 18 नवंबर 1978 को। धीरेन्द्र नाथ गांगुली को धीरेन्द्र गांगुली या डीजी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय सिनेमा में इनके अभूतपूर्व योगदान के लिए इन्हें सन 1975 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तत्कालीन कलकत्ता में ही धीरेन्द्र गांगुली ने अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर इंडो ब्रिटिश फिल्म कंपनी की स्थापना की और धीरेन्द्र नाथ गांगुली की मुख्य फिल्मों में शामिल हैं 1948 की शेष निवेदन, 1938 की हल बांग्ला, 1934 की एक्सक्यूज मी सर, 1921 की विलायत फिरत और 1935 की विद्रोही।
And today is also the death anniversary of James Harrison Coburn, the American film and television actor who was featured in more than 70 films, largely action roles, and made 100 television appearances during a 45-year career. James Harrison Coburn was born on 31st of August 1928. He passed away today. Coburn was capable, a rough-hewn leading man whose toothy grin and lanky physique made him a perfect tough guy, numerous roles in westerns and action films. He played supporting roles in The Magnificent Seven, Hell is for Heroes, The Great Escape, Charade and Hard Times, as well as the lead role in A Man Flint and its sequel In Like Flint, The President's Analyst, Duck, You Sucker, Bad Carrot and Billy the Kid, and also Cross of Iron. In 1998, Coburn won the Academy Award for his supporting role as Glenn Whitehouse in Affliction. In 2002, he received a Primetime Emmy Award for Outstanding Miniseries nomination for producing The Mists of Avalon. I'm playing a snippet from The Magnificent Seven, starring... Coburn also made two guest appearances in CBS's Perry Mason both times as the murder victim in The Case of the Envious Editor and The Case of the Angry Astronaut. In 1962, he portrayed Colonel Briscoe in The Hostage Child of CBS's Rawhide.
और अनीता अब अपने श्रोताओं को जानकारी दे दें अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक अबरार अलवी साहब के बारे में, जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा था। साहब, बीवी और गुलाम, कागज के फूल और प्यासा जैसी कालजयी फिल्मी रचनाओं के रचयिता अबरार अलवी साहब ही थे। तो अब मुझे लगता है आपने ये फिल्में जरूर देखी होंगी।
जी, सारी देखी हैं।
एक से एक बढ़कर ये क्लासिक फिल्में।
एब्सोल्युटली।
तो सुन लेते हैं फिर उन्हीं की लिखी एक फिल्म का ये सदाबहार गीत।
पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे के मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी हर आहट पे समझे
और अब सेक्शन है जन्म जयंतियों का।
जी,
तो इस क्रम में हम अपने श्रोताओं को जानकारी देते हैं भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक रहे बटुकेश्वर दत्त के बारे में, जिनका जन्म हुआ था आज ही के दिन यानी 18 नवंबर 1910 को। देश ने सबसे पहले 8 अप्रैल 1929 को उन्हें उस समय जाना जब वे भगत सिंह के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट के बाद गिरफ्तार किए गए थे।
जी, इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच एनार्किस्ट हु बॉम्ब्ड द फ्रेंच चेंबर ऑफ डेप्यूटी सिंह, वी आर टॉकिंग अबाउट भगत सिंह प्रपोज्ड टू द एचएसआरए हिज प्लान टू एक्सप्लोड अ बॉम्ब इनसाइड द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली टू व्हिच इट एग्रीड। इनिशियली इट वाज डिसाइडेड दैट दत्त एंड सुखदेव Thapar would plant the bomb while Singh would travel to the USSR. However, later the plans were changed and Dutt was entrusted with the planting alongside Singh. On 8th of April 1929, Singh and Dutt threw two bombs inside the assembly, rushing from the visitors' gallery. The smoke from the bomb filled the hall and they shouted slogans of Inqilab, Zindabad, Long Live the Revolution and showered leaflets. The leaflet claimed that the act was done to oppose the trade disputes and the public safety bill being presented in the Central Assembly and the death of Lala Lajpat Rai. Few sustained injuries in the explosion and there were no deaths. Singh and Dutt claimed that the act was intentional. Singh and Dutt were arrested as planned. We have a tribute to the great revolutionary.
फरोशे की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशे की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब।
और अनीता, अब अपने श्रोताओं को जानकारी दे देते हैं सुप्रसिद्ध कुशल निर्देशक, फिल्मकार, बेहतरीन अभिनेता राजा राम वांकुंड्री शांताराम, जो वी शांताराम के नाम से ज्यादा मशहूर हैं। हिंदी फिल्मों में बतौर निर्देशक का शुरुआत करने वाले वी शांताराम ने डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, अमर भोपाली, झनक झनक पायलबाजे, दो आंखें बारह हाथ और नवरंग जैसी विविधतापूर्ण और गूढ़ अर्थों वाली फिल्में बनाकर अलग ही मुकाम हासिल किया था। और इसके अलावा उनकी कुछ और प्रमुख फिल्मों के नाम हैं, ये तो हमने बता ही दिया है। सुन लेते हैं वी शांताराम की फिल्म का एक और बहुत ही सदाबहार गीत।
V. Shantaram had a very keen interest in music. It is said that he ghost wrote music for many of his music directors and took a very active part in the creation of music. Some of his songs had to be rehearsed several times before they were approved by V. Shantaram.
और अब चलते चलते आज का विचार कि अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या न करें, क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है लेकिन सूरज फिर भी उगता है। इसी विचार के साथ इजाजत दीजिए रवि कपूर और अनीता आनंद को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात अवर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।